Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Vibhuti Mishra.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के आज के अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा. शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी लालिमा अनेजा डेंग.
थैंक यू विभूति जी. एज द हेडलाइंस फर्स्ट, सेंसेक्स ड्रॉप्स 118 पॉइंट्स टू क्लोज एट 72,987. निफ्टी स्लाइड 17 पॉइंट्स टू सेटल एट 22,201. Merchandise export estimates reveal strong growth of 6.88% and Brent crude trades at $81 per barrel.
Sensex 118 ank girkar 72,987 par aur Nifty 17 ank fisalkar 22,201 par band. माल निर्यात में अनुमान से 6.88% की मजबूत वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $81 प्रति बैरल. और चर्चा से पहले सबसे पहले शेयर बाजार का हाल जानते हैं. अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले और वैश्विक शेयर बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज गिरावट आई. बीएसई सेंसेक्स 118 अंक या 0.16% फिसलकर 72,987 पर बंद हुआ. निफ्टी 17 अंक या 0.08% फिसलकर 22,201 पर बंद हुआ. बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.060% बढ़ा जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.96% बढ़ गया.
The benchmark indices Sensex and Nifty declined ahead of US inflation data amid positive cues from the global share markets. The BSE Sensex slid 118 points or 0.16% to close at 72,987. The NSE Nifty slipped 17 points or 0.08% and settled at 22,201. 179 stocks hit a 52-week high and 32 stocks hit a 52-week low on the BSE. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.60%, while the small-cap index gained 0.96%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 14 companies appreciated and 16 companies declined. Bharti Airtel rose 2%. Power Grid added 1.6% and NTPC increased by 1.5%. On the other hand, Asian Paints dropped 1.84%, Tata Motors declined 1.81% and HDFC Bank lost 1.6%. In sectoral indices at the BSE, 16 sectors registered gains while 4 sectors witnessed losses. Capital goods sector and power sector gained 2%, industrials rose 1.76% and utilities added 1.3%. Fast-moving consumer goods fell 0.75%, auto sector lost 0.3% and banking slipped 0.18%. The overall market breadth was positive as shares of 2,201 companies advanced and 1,591 companies declined and 143 companies remained unchanged. So, Dr. Sharma, what is the reason behind the fact that Sensex went down and closed at 72,987? We've seen glorious times at touching 75,000. What are the factors that have led to this sliding of by 118 points?
I think these are the market dynamics, and we have observed that during the last 3-4 months, markets are range bound between 21,500 and 22,500. On the basis of so many developments, like markets are looking at global headwinds, geopolitical developments, domestic political developments, inflation and interest rates. These are the factors which are influencing the market. Sometimes the good news comes and markets go up and go up to the level of 22,500, 22,600 in the Nifty and Sensex 74, 75. But on the sometimes the bad news comes, like global headwinds, like the geopolitics is deepening and there are uncertainties in the interest rates in the US, and the inflation in US may remain sticky. So that's why markets sometimes take the downturn. So these are 4-5 factors which are influencing the markets during the last 3-4 months, and going forward, I believe markets are looking at stability in the geopolitical developments going forward, that the geopolitical developments must subside, and political stability at the domestic level, and the deceleration in US inflation, and a cut in the Fed rate in the coming time. So these are the 4-5 factors which are markets anticipating in the coming times to move forward and to take the new direction in the coming times.
We had a recent development of the Chabahar port. Do you think that could also have some effect on the markets, because that would facilitate India's trade with that part of the
Yes, that world. Is a great, I think, gateway for Central Asia, as India's bilateral relations are becoming strong with the Asian, South Asian and Central Asian and even the Middle East Asian countries, Middle East countries. So all these developments are helping the markets to move forward, as we have to expand our export trajectory, and we have already posted a good number in the exports in 21-22 and 22-23, and thereafter in 23-24 we were also very good in the export segment, despite the so many headwinds and the high interest rates and uncertainty in many economies. And the start of the current year is also very good, as we grew at around 6% in the month of April in our export trajectory. So all the fundamentals, I believe the external fundamentals are becoming more and more robust, as our forex kitty is also very strong and all-time high, hovering at around all-time high. But these 4-5 sectors will again shape the market mood in the coming times.
जी उतार चढ़ाव जो है वो ये तो बाजार की चाल है, उसका स्वभाव है जी. अभी चाबहार की बात हुई थी, चाबहार डील लगभग 2 दिन पहले ये हुई है, और इसको लेकर के विदेश मंत्री ने भी कहीं एक कार्यक्रम में कहा कि इससे सबको फायदा है, इससे तो उनका इशारा थोड़ा सा अमेरिका की ओर था. हम देखें तो आज कारोबार जो बाजार है उसका 3rd दिन है, पहले दिन और दूसरे दिन जो है मजबूत रहा. फिर भी अगर एक अनुमान की बात करें हम, तो आगे आप क्या देखते हैं, जबकि आज गिरावट दर्ज की गई है?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट्स कभी भी एक सिंगल व्यू पॉइंट या किसी के कहने के अनुसार मार्केट्स नहीं चलती. मार्केट्स आर मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस वर्ल्ड. मार्केट्स अपने आप अपनी शेप लेती हैं, जो भी उनको सही लगता है, गलत लगता है, उसके अनुसार ही मार्केट्स मूव लेती
है.
और हमारी मार्केट जो है 21,500 से 22,500 के बीच में कंसोलिडेट कर रही है. ये बहुत ही बड़ा हेल्दी साइन है. मार्केट्स को इस टाइम पे कंसोलिडेट करना भी चाहिए था. और जैसे मैंने बताया पहले कि 4-5 फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. एक तो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो हम देखते हैं कि कई बार युद्ध की जो स्थिति है रशिया यूक्रेन में ऑलरेडी बरकरार है, उसके बाद हमने गाजा और इसराइल में देखा, फिर हमने ईरान और इसराइल में देखा, ईरान और पाकिस्तान में भी थोड़ा टसल हमने देखा है. तो ये डेवलपमेंट्स जब और डीपन होती हैं, कई बार ऐसी कोई न्यूज आती है कि कुछ ऐसा युद्ध की स्थिति बन गई है या फिर कोई किसी के ऊपर मिसाइल दाग दी गई है, तो मार्केट्स के ऊपर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. नंबर 2, जो यूएस की इन्फ्लेशन की स्थिति है, क्योंकि यूएस एक मेजर इकोनॉमी है, अगर यूएस में इन्फ्लेशन डेसिलिरेट करता है तो पूरे वर्ल्ड में जो मार्केट्स हैं उसको सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि यूएस के पास एक स्कोप बनता है कि वो अपना फेड रेट आने वाले टाइम में कट करेगा, और जो लिक्विडिटी है मार्केट्स में वो इंक्रीज होगी, डॉलर थोड़ा रैशनल होगा जो काफी मजबूत रहे पहले, तो उसका सभी मार्केट फंडामेंटल्स के ऊपर असर होता है। तो ये मार्केट डायनामिक्स है। कई बार हम देखते हैं कि मार्केट्स में 200-300 पॉइंट्स का उछाल आया, कई बार हम देखते हैं करेक्शन आई, अगले दिन ही क्या हो गया। तो ऑल दीज आर मार्केट्स का, देखो मार्केट्स आर नॉट स्टैटिक, मार्केट्स आर डायनामिक, मार्केट्स को या ऊपर जाना है या नीचे जाना है,
और यही खूबसूरती है इसकी।
जी 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 जी, मार्केट्स कभी एक पॉइंट पे नहीं रहती हैं, उनका नेचर है कि ऊपर जाना या नीचे जाना, या फिर वो थोड़ा बहुत स्टिकी किसी कुछ मोमेंट लेके एक दो दिन के लिए रहती हैं, उन्होंने कोई ना कोई शेप तो लेनी ही होती है।
जहां तक जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात है, तो जब अभी कुछ जब गंभीर सा थोड़ा सा मामला, तो हमने देखा कि सोने में बहुत स्ट्रेस आया थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा वो एक कम लगा है, तो कम लगने के बाद जो है अब आपको क्या लगता है कि चूंकि देश में चुनाव का भी समय है, नई सरकार बनेगी, तो क्या सतर्क हैं कुछ निवेशक इसको लेकर के?
देखिए गोल्ड में जो मजबूती आती है, गोल्ड एक अगर आप थोड़ा सा 15-16 साल पीछे का एक पिक्चर देखेंगे तो लेमन क्राइसिस से लेके जब गोल्ड लगभग कोई 7,000-8,000-9,000 इसके आसपास होवर करता था, उसके बाद गोल्ड में एक बहुत तेज मैं समझता हूं कि मल्टी ईयर बुल मार्केट में गोल्ड एंटर किया लेमन क्राइसिस के बाद, जब करेंसीज के ऊपर थोड़ा सा लोगों का विश्वास कम हुआ, क्योंकि बहुत ही करेंसीज अंडरमाइन हुई थी, बहुत बुरे तरीके से अंडरमाइन हुई थी और बहुत डिसेलिरेट हुई थी। उसके बाद गोल्ड में जो गति है वो बरकरार रही है, उसके बाद इसने 10,000 से 20,000, 20 से 25, 25 से 40, 40 से 50, 50 से अभी 75 के आसपास भी पहुंच चुका है। तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल मूवमेंट देखें, पिछले 15 साल में जाएं, ज्यादा दूर नहीं, तो आने वाले टाइम में जो हम अनसर्टेनिटीज देख रहे हैं, जो खास करके अभी जो जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं कि जो अभी थम नहीं रही हैं, पिछले 2 साल से तो वो कंटिन्यू है, तो और अगर ये अनसर्टेनिटीज और डीपन होती हैं तो दिस विल कॉज सम एस्कलेशन इन दी प्राइसेस एंड द इन्फ्लेशन कैन रीएमर्ज वंस अगेन। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो गोल्ड है उसमें जो लोगों का विश्वास है वो काफी स्ट्रांग हुआ है, और खास करके सेंट्रल बैंक्स ने भी अपना जो मत है, जो उनका विश्वास है, वो बहुत बड़े अच्छे तरीके से जाहिर किया है। काफी जो परचेजिंग है हम देखते हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, मतलब काफी कंट्रीज ने अपने जो किटीज हैं, फॉरेक्स किटीज हैं, उनमें गोल्ड की जो मात्रा है उसको इंक्रीज किया।
इट इज दैट व्हेनेवर देयर इज एन अनस्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, द कंट्रीज, द सेंट्रल बैंक स्टार्ट कलेक्टिंग गोल्ड एंड द गोल्ड प्राइसेस गो अप। बट दिस टाइम वी ऑल्सो सॉ दैट यूजुअली द शेयर मार्केट्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड, बट वी फाइंड दैट द शेयर मार्केट्स आर डूइंग वेल एंड द गोल्ड इज डूइंग इक्वली वेल। दैट हैज बीन अ काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन, आई वुड से।
यस यस, दैट इज
एन ऑप्टिमिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन।
या डेफिनेटली, बिकॉज आफ्टर द लिमिट crisis, whole economics has been changed. Like the you must have observed that during the Lehman crisis, gold was also going down at a moment, and the markets were also going down. And though both were in the same direction because of some fluctuation in the currency markets. So thereafter, then the gold was going up and the markets were also going up. So though there is inverse relation, but sometimes in the times of difficulties, both can move in tandem.
इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा उसमें शेयर बाजार की ओर लेते हैं।
जी,
चुनाव का समय है, अभी अगले महीने फिर सरकार का गठन होगा। शेयर बाजार में अगर हम निवेशक की बात करें, तो जैसे आप बाजार के जानकार हैं, जो बारीक चीजें हैं उसको समझते हैं, निवेशक को आप क्या कहना चाहेंगे कि निवेश में देर नहीं करना चाहिए, या थोड़ा वो धैर्य रखें, थोड़ा रुकें, सतर्क रहें?
देखिए, इस टाइम पे मार्केट्स बहुत ही वॉलेटाइल हैं, और ये वॉलेटाइलिटी बहुत कंटिन्यू रहेगी, बहुत तेज गति से आएगी आने वाले दिनों में। वॉलेटाइलिटी, मार्केट्स विल बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट्स, ये जो 4-5 डेवलपमेंट्स हैं, कभी हमें ग्लोबल लेवल पे कुछ समाचार मिलेगा, कभी हमें डोमेस्टिक लेवल पे कुछ समाचार मिलेगा, उसके अनुसार ही मार्केट्स मूव करेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर को, अगर उसने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको बने रहना चाहिए। अगर वो ये मूवमेंट जो वॉलेटिलिटी है उसका उसमें कुछ एंटर करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ मुनाफा लेना चाहेंगे कि मैं इस तरीके से, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे डे ट्रेडिंग या कुछ ऐसे, उसमें उनको खराब लॉस हो सकता है। तो रिटेलर को चाहिए कि वो मार्केट्स में बने रहें, क्योंकि मार्केट्स में हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, पर्टिकुलरली इन द मेजर इकोनॉमीज। इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी इज ऑल्सो सॉफ्टनिंग, इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से हमने एड्रेस कर लिया है। एक्सपोर्ट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो ऑन द राइज, हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं मोबाइल फोन के, सेमीकंडक्टर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, तो हमारी जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है उसको हम नहीं रोक सकते, हम ग्लोबल डेवलपमेंट्स को नहीं रोक सकते, हम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को नहीं रोक सकते, हम नहीं यूएस इन्फ्लेशन को नीचे लेके आ सकते, वो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी और वो मार्केट्स को वॉलेटिलिटी देती रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट्स में बने रहना चाहिए। अगर शॉर्टर टर्म के लिए कोई ये चाहेगा कि मैं मुनाफा कमा लूं या मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एक्चुअली
इसी बीच रूपये का हाल जानते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूपया 83.50 से बंद हुआ, जबकि इसका पिछला बंद स्तर 83.51 था। हालांकि विदेशी बैंकों की ओर से डॉलर की बिक्री के कारण सत्र की शुरुआत में रूपये में तेजी आई थी, लेकिन बाद में उन्हें डॉलर के लिए बोली लगाते दिखा गया, जिससे मुद्रा पर असर पड़ा है। एशियाई और यूरोप के बाजार का हाल भी आपको बताते हैं। एशियाई शेयर बाजारों का हाल मिलाजुला रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% मजबूत हुआ, जापान का निक्केई 0.08% बढ़ा, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.83% कमजोर हो गया। सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.73% और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स में 0.22% की गिरावट दर्ज की गई। इधर यूरोपीय शेयर बाजार भी मिले जुले तौर पर कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.46% बढ़ गया, लंदन का फुटसी 0.33% मजबूत हो गया, जबकि फ्रांस का कैक 0.18% नीचे कारोबार कर रहा था।
Let's have a story on exports. Dr. Sharma, you talked about growing exports. We have a very nice story. Total exports of merchandise and services in financial year 2024-25 is estimated to begin with strong growth of 6.88%, estimated at $64.56 billion in April 2024 as compared to $60.40 billion in April 2023. Merchandise exports grow by 1.08% at $34.99 billion in April 2024 as compared to $34.62 billion in April 2023. Main drivers of merchandise exports growth during April 2024 include electronic goods, organic and inorganic chemicals, petroleum products and drugs and pharmaceuticals. Electronic goods exports increased by 25.8%, exports of organic and inorganic chemicals to rise by 16.75%, drugs and pharmaceuticals exports to add 7.36%, and petroleum products exports to go up by 3.10%. Merchandise imports in April 2024 is estimated at $54.09 billion as compared to $49.06 billion in April 2023. The estimated value of services export for April 2024 is estimated to increase to $29.57 billion, and the estimated value of services import for April 2024 is estimated to rise to $16.97 billion. You're always very, very well-versed with global statistics on a big scale, Dr. Sharma, because you always have an overview. How do you interpret the story that we are going very strong on exports?
Yes, the story is very interesting. Uh-huh. As in the post-COVID years, we are becoming more and more strong in our external sector, and our exports are increasing significantly from I believe less than $300 billion to then more than $500, then more than $600, and now we are more than $700 billion last year. So going forward, we have target of $2 trillion by 2030, of which $1 trillion will come from the merchandise and $1 trillion will come from the services. So that is the ambitious target of our economy, to become a major exporter in the world economic system. And already we are competing with the top 20 exporters. I would like to mention that in the post-COVID years, in 21-22 and 22-23, India was the fastest growing exporter also among the top 20 exporters. That is a great thing which has happened in the post-COVID years.
Sure.
And this year, again, we are starting off with a good note, and we are growing at around 7% in the month of April. So going forward, our supply chain, our connectivity with the global markets, and our agreements, particularly we are strengthening our corridors, like we signed during the G20 this India-Europe-Middle East corridor, rail corridor also, and then so many developments in the supply chains and re-engineering of the supply chains. We are becoming more and more strong with the Middle East and European countries also. And already we are very strong with US, as that is our largest trade partner. So going forward, there are expectations that our bilateral trade with the Central Asian countries and Asian countries will become more and more strong in the coming times, and we will be able to achieve our ambitious target of 2 trillion by 2030.
And in India, on the domestic front, we've worked very hard towards like ODOP, one district, one product, like in Uttar Pradesh. And we, it's very peculiar to our country that every district has something special to offer. And do you think that we have worked very hard towards that? Also, another factor of good export, also good healthy exports are dependent on the other countries' economy. If the if Europe does well, that means our exports will do well.
Yes, demand certainly.
There is a symbiotic relationship between the other countries' economy and our exports.
Yes, demand is certainly a major factor for the growth in exports, but we have taken so many measures for the ease of doing exports. Government has provided so many reforms for the export and trade facilitation measures, and the PLI scheme also, that which is becoming a major growth driver of the export trajectory, and
that's
exporters
right.
are gaining a lot of benefits from the PLI.
Mm-hmm.
And the other reforms like ease of doing business and the connectivity with the global markets, all these fundamentals are supporting the export trajectory to become more and more strong and to become lucrative in the global export charts.
And Gati Shakti, and making highways, investing in ports, infrastructure, that will also facilitate the whole export mechanism.
Yes.
इससे पहले हमने एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जाना था, तो हमने देखा कि उसमें अधिकतम गिरावट ही रही. तो क्या ऐसा होता है कि कई बार वहां के जो लोकल इश्यू होते हैं अलग अलग वहां पे, वो उसको इफेक्ट करते हैं?
देखिए, कई बार क्या होता है कि जो अभी हम देख रहे हैं कि जो काफी ऐसे कंट्रीज अभी भी हैं जो पोस्ट कोविड के ग्रोथ रेट थे उससे ऊपर नहीं आए हैं वापस. एक बार थोड़ा लो बेस इफेक्ट की वजह से वो ग्रो किए, वापस फिर वो डेसेलरेशन में आ गए. वर्ल्ड इकोनॉमी हम 6% के ऊपर ग्रो किए कोविड के इमीडिएटली बाद 2021 में, उसके बाद ये ग्रोथ डेसेलरेट होते होते अभी हम कितने 2.7% पे आ गए हैं वापस 6% से. लेकिन इसमें इंडिया एक यूनिक कंट्री है. इंडिया का जो ग्रोथ है वो टोटली इंटैक्ट है. कोविड के जस्ट बाद हम 9.1% पे ग्रो किए, उसके अगले साल में हम 7.2% पे ग्रो किए, उसके अगले साल जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर था उसमें एस्टीमेट्स हैं कि हम 7.7 और 7.8% पे ग्रो करेंगे. अभी काफी फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो दे आर सेइंग दैट वी विल ग्रो एट अराउंड 8% इन द करंट ईयर ऑल्सो. तो इंडिया की जो स्टोरी है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेनी एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज इन सो मेनी रीजन्स ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम. तो हमारी ग्रोथ मोमेंटम जो है वो काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, और आने वाले टाइम में उम्मीदें हैं कि ये ट्रैजेक्टरी, जैसे हम एक हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है कि भी वी विल बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047, सो द प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एंड वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रांग एंड लुक्रेटिव एंड वाइब्रेंट इन द ग्लोबल इकोसिस्टम. At IMF always says that India is a major growth supporter to the global growth, as we contribute around 15% in the global growth trajectory. Means if $100 are added in a year in global GDP, $15 are coming from India.
हम तीसरी, हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, तो क्या कहीं न कहीं से यह भी माना जाए कि जो भारत का असर जो बाकी बाजार हैं उस पर भी पड़ता है, वो भी सहमते हैं?
जी बिल्कुल, जो असर पड़ता है खासकर के जो हम देखते हैं कि डेवलपिंग एंड इमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर जो भारत का जो गति है, जो भारत की सोच है, मैं कहूंगा कि हम एक बड़ा अच्छा थॉट लीडर, जैसे G20 में हमने देखा मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड अवर थॉट प्रोसेस. दे से इंडिया स्टोरी इज वेरी यूनिक एंड वी provided so many new reforms. जैसे हमने जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर का एक आह्वान किया, और जो कि एक पूरा खित्ते को जोड़ेगी और पूरा सप्लाई चेन्स को और समर्थन करेगी.
right.
तो और हमने फिर इसमें और नई नई डेवलपमेंट्स करके नए नए सुझाव देके हम आगे बढ़े हैं G20 में भी, जो कि एक मिसाल बने.
एंड मेनी कंट्रीज विल बी यूजिंग रूपी एज अ
एंड रूपी इंटरनेशनलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रूपी इन मेनी इकोनॉमीज. जो नहीं तो जिस तरीके से हमारी जो ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस है, जिस तरीके से हमारी डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज हो रही है, अगर हम रूपी को इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे तो बहुत इम्पैक्ट आएगा, रूपी को बहुत प्रेशर हो सकता है. सो दैट इज द ग्रेट थिंग विच हैज हैपन्ड दैट नाउ वी आर आवर ट्रांजेक्शन्स मेजरली आर अलाउड इन मेनी कंट्रीज इन द रूपी, वेदर द इन्वेस्टमेंट्स और द ट्रेड.
सोना और चांदी का हाल जानते हैं. कमजोर अमेरिकी डॉलर और कम ट्रेजरी पैदावार से समर्थन लेते हुए आज सोने की कीमतों में तेजी आई. निवेशकों को अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति डेटा का इंतजार है, जो इस बात का संकेत दे सकता है कि फेडरल रिजर्व कितनी जल्दी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. जून अनुबंध के लिए अंतिम समाचार मिलने तक सोना 72,503 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 85,598 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. एसपी शर्मा, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे, फिलहाल अभी जो हम देखते हैं उस तरह का जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं है जो पहले भी चर्चा आपसे हुई थी. जब इस तरह का कुछ बातें सामने आई थी, ईरान का और इसराइल का जब ज्यादा बढ़ गया था, अचानक बहुत तेजी आई थी, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. हालांकि रफाह में जो है वो टैंक घुसा है, तत्कालिक कारण क्या लगता है आपको कुछ तेजी का इसमें?
गोल्ड की बात जी. देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि गोल्ड के लिए कोई एक फैक्टर नहीं होता है.
अच्छे
जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट होगी या उसमें कुछ तसल होगी तभी गोल्ड के प्राइसेस पड़ेंगे. ये तो अभी दो साल से हुई है, बट द गोल्ड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग सिंस 2007-8 फ्रॉम 7,000 टू एट अराउंड 50-55,000. आफ्टर द 55,000 ये डेवलपमेंट सब हुई है कि जियो पोलिटिकल. तो ये कोई एक फैक्टर गोल्ड को कभी भी निर्धारित नहीं करता. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, गोल्ड इज एक्सपेक्टेड टू मेक न्यू मूव्स इन द कमिंग टाइम्स. हमें लगता है कि शायद ये आने वाले टाइम में और भी तेज गति से उच्च स्तर बना सकता है.
Yes, that's right. And what are your views about India's hunger for gold never ends on a domestic front? There are gold bonds as well, which give you 2.5% interest rate. And if you invest today, after 5 years or 8 years, you can take the money out. And by that time, the prices of gold have risen and you get the, you know, that kind of thing. Are you in favor of, as an economist, if you ask a lady, the answer would be different. But as an economist, what would you prefer, to invest in gold jewelry or the bonds, which the government?
No, I'll prefer bonds because that is a win-win situation. They are providing the interest rate also. If gold prices become sticky, then you are getting the interest also.
That's
so true. So you will be gaining in any situation.
And no loss of making charges.
No, yes.
Which are always
so,
there.
Yeah, yeah. So otherwise I am in favor of investing in any form in gold. But this is a great thing which has happened in the investing in the sovereign gold bonds is a major development for the benefit of the investors actually.
Yes, and it's been there for quite some time by the government.
Yes,
yeah. All right, let's move on to oil. Oil prices fell by $0.5 a barrel on Wednesday. Brent crude fell by 0.7% to $81.80 a barrel by the U.S. West Texas Intermediate WTI declined 0.68% to $77.49 a barrel when reports last came in. They are saying that India's oil demand will grow 4% in 2025. OPEC says that. Where do you see it going? We have invested a lot in renewable energy still. Do you think our demand for oil will be there?
Yes, our demand will be there, but I don't see any major escalation in the crude oil prices going forward because gold global demand is decelerating. Your global GDP is anticipated to grow at 2.7%, which is much lower than the 21-22 levels. So major escalation will not happen, but the crude prices will remain volatile because of the such kind of geopolitical development that always happen, that crude is most volatile commodity in the world economic system.
Yeah. Right. All right. Thank you, Dr. S.P. Sharma, for your important views and reviews. And friends, before we wind up, here's a look at the headlines.
Thank you.
Sensex drops 118 points to close at 72,987. Nifty slides 17 points to settle at 22,201. Merchandise export estimates reveal strong growth of 6.88%. And Brent crude trades at $81 per barrel. Well, that's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Vibhuti Mishra signing off. Namaskar.
Namaskar.
Market Mantra.